नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका शीर्षक के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए सहयोगात्मक, नवोन्मेषी और सतत रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने किया है। इस सम्मेलन के दौरान श्री शाह छत्तीसगढ़ के सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की सीएसआर पहल के अंतर्गत गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को कर्मचारी भविष्य निधि योजना ईपीएफएस के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसमें पिछले 11 वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंदुलकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं होने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग ईपीएफओ के दायरे से बाहर रह गया है। ईपीएफएस एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रतिमाह 15,000 रुपए की मौजूदा वेतन सीमा मनमानी और तर्कहीन है और विशेषज्ञ निकायों तथा संसदीय समितियों की बार बार की सिफारिशों के बावजूद इसका मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
निर्वाचन आयोग राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि दावेदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि आज से 6 फरवरी तक निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को पिछले वर्ष 30 दिसंबर को मतदान पर्यवेक्षक सी मुरुगन पर हुए हमले के संबंध में आज शाम 5 बजे तक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। श्री मुरुगन पर दक्षिण 24 परगना जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य का निरीक्षण करते समय हमला हुआ था। बांग्लादेश में झेनाईदाह जिले के कालीगंज इलाके में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया है कि उसे पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसका सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता ने दावा किया कि उसके बाल काट दिए गए और दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया। इस संबंध में कल कालीगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया जिसमें 2 पुरुष और 2 महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। 45 वर्षीय हसन नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फातेह बेरोल से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की यात्रा पर हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्री फ्रेडरिक भारत की पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान अहमदाबाद और बंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मर्ज का स्वागत करेंगे। दिल्ली के आदर्श नगर में दिल्ली मेट्रो के क्वार्टर्स की एक इमारत में आग लगने की घटना में एक दंपति और उनकी 10 वर्षीय बेटी की मौत हो गई। अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगने की सूचना तड़के 2:39 पर मिली। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 197 अंक गिरकर 85,248 पर और निफ्टी 25 अंक गिरकर 26,224 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।